जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। वो तो कोई 40 दिनों के पर्वत पर चला गया था। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गाड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इसराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। निर्गमन 32:1-4 पद। इस प्रकार उसने सारे सोने को पिघलाया और ढालकर सोने का एक बछड़ा बनाया और टांकी से गाड़ा। इस पर बड़ी सावधानी से ध्यान दे, क्योंकि आप पाते हैं कि हारून एक पुरातन झूठ का पुतला है। उसने गाड़ने का औजार लिया और एक छोटा सोने का बछड़ा बनाया। स्मरण रखें कि वो एक महायाजक था। ये आपके लिए एक चेतावनी है। सुसमाचार की सेवकाई में भी सब ईमानदार नहीं है। आपको पाखंड, धोखे, छल और झूठ से भरे पात्र प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार लोगों ने अपने अपने कानों की बालियां उतारकर हारून को दी और उसने सोने को ढाला और टाकी से गाड़कर एक बछड़ा बनाया। हे इसराइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। निर्गमन 32:1-4 पर। कितनी जल्द ये लोग भूल गए मेरे मन पर जो बहुत भारी बोझ है, कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो हवा की लहर के समान मूर्ख धर्म सिद्धांत में फंस जाते हैं। तमाम तरह की झूठी शिक्षाएं धर्म सिद्धांतों की हवा बह रही है और बहुत से उनके जाल में फंस जाते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि सही धर्म सिद्धांत तीव्रता से फैले जैसे झूठे धर्म सिद्धांत फैल रहे हैं, परंतु इन झूठे धर्म सिद्धांतों के पर लगे हैं और वे तीव्रता से फैले जाते हैं। जो आज सबसे अधिक प्रचलित धर्म शिक्षा है वो समृद्धि की है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान समृद्ध और हष्टपुष्ट रहे। यदि आप समृद्ध और स्वास्थ्य नहीं है, तब तो परमेश्वर के साथ आपके संबंधों में कोई ना कोई समस्या है। प्रभु दया करे, क्या ही क्रूर एवं भ्रष्ट धार्मिक शिक्षा। परंतु ये फैली कैसे? पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा था, हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्ध हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? गलातियों 3:1-3 पर। निर्बुद्ध इसराइलियों, तुम सत्य से इतनी जल्दी फिर गए। परमेश्वर तो तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है कि जीवित सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, और अब यहां तुम्हारे सामने सोने की ये छोटी मूर्ति है। ये तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, और लोग मांग कर रहे हैं, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, अर्थात हम उसकी आराधना करें। इसका परिणाम देखिए। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और ये प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा, और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं। निर्गमन 32 5-7 पद। ध्यान दें कि परमेश्वर इस समय पर उन्हें अपनी प्रजा कहने तक का दावा नहीं कर रहा है। तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है कि हे इसराइलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हटीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, मैं उन सबको मिटा डालूंगा। मूसा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हम फिर से दोबारा सब शुरू करेंगे। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को ये कहने मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरी कोप अपनी प्रजा पर क्यों भटका है जिसे तू बड़े सामर्थ के बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। ये मेरी प्रजा नहीं है यहोवा। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम इसाक और याकूब को स्मरण कर जिनसे तूने अपने ही शपथ खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और ये सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वो उसके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। निर्गमन 32:8-14। अब हमारे सामने एक समस्या है। गिनती 23:19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वो वचन देकर उसे पूरा ना करें? इसका कहने का तात्पर्य क्या है? यहोवा ने पछताया। धर्मशास्त्र के पढ़ने ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर क्रोधित है और वो इसराइल वंशियों को नाश कर देगा। मूसा ने उन्हें बचाने के लिए बुद्धि काम में ली और परमेश्वर से विवाद किया, देख यदि तू उन्हें मिटा देगा तो मिस्री यही कहेंगे कि वो उन्हें इस देश से इसलिए निकाल ले गया कि धरती पर से मिटा डाले, वे तेरे विरुद्ध बुरी बुरी बातें बोलेंगे। हे परमेश्वर, वे तेरे विरुद्ध बुरी बातें क्यों बोलने पाए? तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। परमेश्वर अपने क्रोध में उन्हें नाश करना चाहता था, परंतु मूसा ने अपना दिमाग ठंडा रखा और परमेश्वर के प्रकोप को रोका। स्मरण रखे, ये मूसा ने लिखा था, परंतु हमारी समस्या ये है कि हम परमेश्वर के कार्यों को मानवीय रूप से लेते हैं। एक अनंत परमेश्वर से क्रियाकलाप मानवीय भाषा में ठीक से वर्णित नहीं किया जा सकते, परंतु परमेश्वर की गतिविधियों को हम मानवीय भाषा में ही व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हमने परमेश्वर ने पछताया शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर को ना तो बदलने की आवश्यकता है ना तो पछताने की आवश्यकता है। अब मैं मानवीय भाषा में इस सत्य को कैसे व्यक्त कर सकता हूं कि उन लोगों पर परमेश्वर का दंड आने वाला था परंतु आया नहीं? इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर बदल गया है, वास्तव में ऐसा है नहीं। हम फिर देखते हैं कि मूसा मध्यस्थता की प्रार्थना करता है और परमेश्वर को रोकता है। मूसा के मन में मध्यस्थता का विचार किसने डाला? इन लोगों के प्रति मूसा के मन में प्रीति किसने जगाई? ये परमेश्वर का ही काम था। मूसा की प्रार्थना का प्रेरणा स्रोत परमेश्वर ही था। सच्ची प्रार्थनाएं परमेश्वर के साथ आरंभ होती हैं। इस प्रकार प्रार्थना की प्रेरणा उसे वास्तव में परमेश्वर से ही प्राप्त हो रही थी। परमेश्वर तो आरंभ से ही सब कुछ जानता है। वो जानता था कि इसराइल के संतान सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। वो जानता था कि वे बछड़ा बनाकर उसकी उपासना करेंगे। सच तो ये है कि उनके करने से पहले ही उनके काम जानता था। परमेश्वर मूसा से उनके पाप के दंड के बारे में कह रहा था। मूसा अब परमेश्वर से प्रेरणा पाकर कि उनके छुटकारे या उद्धार के लिए विनती करें। परंतु इस गतिविधि का वर्णन करना कठिन है। मानवीय शब्दों में परमेश्वर की गतिविधियों को बताना कठिन होता है, परंतु वचन स्पष्ट है, इसलिए उनका वर्णन करने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है। परमेश्वर की गतिविधियों को हमें अपनी भाषा में ही व्यक्त करना होगा। हमारी शब्दावली परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करने के लिए कम पड़ जाती है। यदि परमेश्वर ने उन्हें नाश करने को ठान लिया होता, तब तो उसने उन्हें नाश कर दिया होता, और जो कुछ भी मूसा कहता उसका परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका विनाश ना किया जाना ही इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर उनका नाश पहले से ही नहीं करना चाहता था। मूसा को परमेश्वर के क्रोध और इन लोगों पर उसके आने वाले दंड का वर्णन मानवीय भाषा में करना था, परंतु परमेश्वर का दंड उन पर नहीं आया। अतः मूसा को ये बातें मानवीय शब्दों में व्यक्त करना था और ये भी स्पष्ट करना था कि वे परमेश्वर के सामने अपवित्र होकर भी कैसे बच गए। उसके पास केवल मानवीय शब्द थे जिनके द्वारा उसे परमेश्वर की बातों को और उसके भेदों को समझाना था, और वो भी तब जब उसे उनकी पूरी समझ प्राप्त न हो। परमेश्वर ने कहा, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यशया 55:8। परमेश्वर की गतिविधियों का वर्णन करने के लिए मैं भाषा का उपयोग तो करता हूं, परंतु वो अपूर्ण है। इसलिए मैं परमेश्वर के कार्यों का अर्थ किसी प्रकार व्यक्त कर देता हूं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, ना ही वो मनुष्य का पुत्र है कि पछताए। परंतु हमने पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा है, परमेश्वर पछताया। परंतु ये मनुष्य की अपर्याप्त भाषा है। परमेश्वर की गतिविधि का वर्णन करना है, इसके सिवाय हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार परमेश्वर की बातों का वर्णन करने के लिए हम भाषा सीमा में बंधे हैं और हमारी भाषा इस कार्य के लिए पूरी नहीं पड़ती है। प्रेरित पौलुस जब स्वर्ग तक ऊंचा उठा गया था और वापस नीचे आया, तब उसने कहा, व्यवस्था के विरुद्ध होगा, ये एक अपराध होगा यदि मैं उन बातों को जो मैंने सुनी उनका वर्णन मनुष्य की भाषा में करने का प्रयास करूं। आप ऐसे नहीं कर सकते। उसने भी प्रयास नहीं किया था। उस स्वर्गीय राज्य के वैभव, सुंदरता और महिमा का वर्णन मनुष्यों को किसी भी भाषा या बोलियों में नहीं किया जा सकता। हम बताने का प्रयास कर सकते हैं, पर यह पर्याप्त वर्णन न होगा। ये उस सबसे कहीं बहुत दूर या परे होगा कि जिन बातों को हमने जाना, अनुभव किया या देखा, उनका वर्णन अपने शब्दों में कर सके। यदि हम करने का प्रयास भी करते हैं तो ये एक अपराध होगा कि इसका वर्णन करने के लिए मनुष्य की भाषा का उपयोग करें जो पर्याप्त नहीं है। तो भी हमने परमेश्वर की गतिविधियों का वर्णन करना है और हमारे पास केवल मानवीय भाषा की शब्दावली है। अतः हमें परमेश्वर के कार्यों को मानवीय समझ के अनुसार ही व्यक्त करना होगा। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर ने जो सोचा है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने उनके विनाश का विचार किया था और वो करता भी है। परंतु परमेश्वर ने मूसा की मध्यस्थता को एक बहाना बनाया कि उन्हें बचा ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दया दिखाने में प्रसन्न रहता है। तब मूसा फिरकर साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। उन तख्तियों के तो इधर और उधर दोनों आलंगों पर कुछ लिखा हुआ था और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। निर्गमन 32:15-16 पद। ओह, उन दो तख्तियों को देखना सच में उत्तेजनात्मक होगा जिन पर परमेश्वर ने आज्ञाओं को अपनी उंगली से खोद कर लिखा था। पत्थर की उन दो पट्टियों को देखना क्या ही अमूल्य होगा। जब यहोशू को, जो कि मूसा का सेवक था, जो मूसा के साथ था, लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, वो जो शब्द है वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वो बछड़ा और नाचना देख पड़ा और मूसा का कोप बड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इसराइलियों को उसे पिलवा दिया, लो अपने देवता को पियो। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने मुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको तोड़कर उतार लाए, और जब उन्होंने मुझे दे दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब ये बछड़ा निकल पड़ा। निर्गमन 32:17-24 पर। हारून, तूने ये क्या किया? तूने कैसे इन्हें इतने बड़े पाप में फंसा दिया? हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यू कहता है कि अपनी अपनी जान पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करूं। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के अटकल लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वो आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। निर्गमन 32:25-31 पद। यहां हम मूसा को एक मध्यस्थ के रूप में देखते हैं जो परमेश्वर के सामने इसराइल वंशियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मध्यस्थ की प्रार्थना वो प्रार्थना है जो मेरे और मेरी आवश्यकताओं से हटकर दोषी संसार को परमेश्वर के सामने लाती है कि परमेश्वर कुछ करे। प्रार्थना के 3 रूप है। पहला, आराधना, स्तुति, श्रद्धा अर्पण और आभारोक्ति। ऐसी भक्ति मेरे अंतकरण से निरंतर निकलती रहती है। परमेश्वर के उपकारों, उसकी आशीषों, उसकी करुणा और उसके प्रेम के लिए मेरे मन में परमेश्वर के प्रति जागरूकता, उसका बोध और उसकी स्तुति सदा उमड़ती रहती है। वो सब जो वो मेरे लिए है, वो सब जो वो मेरी आवश्यकताओं में बन जाता है, संसार का सौंदर्य और मेरे जीवन में उसकी मन भावन उपस्थिति और अनुग्रह के लिए, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मेरे मन से उसके लिए धन्यवाद निकलता रहता है। प्रार्थना का दूसरा रूप है विनती करना, जहां मैं परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं और अपने निवेदनों को लाता हूं। मुझे बल की आवश्यकता होती है, मुझे बुद्धि की आवश्यकता होती है, मुझे बहुत सी बातों की आवश्यकता होती है, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करे। मेरी प्रार्थना मध्यस्थता तब बन जाती है जब मैं परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकता को रखता हूं, मैं परमेश्वर के सामने समाज की आवश्यकताओं को रखता हूं, मैं परमेश्वर के सामने अपने देश की आवश्यकताओं को रखता हूं और संसार की आवश्यकताओं को रखता हूं। ये मध्यस्थता की प्रार्थना है। कोई भी प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना ना हो। हॉवेल की पुस्तक द इंटरसेसर्स मध्यस्थता को पढ़े। मध्यस्थता की प्रार्थना पर ये एक आकर्षक पुस्तक है। मेरा विश्वास है कि आज मध्यस्थता की प्रार्थना की बड़ी आवश्यकता है, वरन एक सेवकाई ही ऐसी हो जो मध्यस्थता की प्रार्थना करते रहे। संसार कभी नहीं जान पाएगा कि प्रार्थना द्वारा बहुत से काम होते हैं। हर काम के पीछे जो शक्ति है वो प्रार्थना की है। मैं उन 130 लोगों के लिए परमेश्वर का बहुत आभारी हूं जो प्रतिदिन पूरी पूरी रात मध्यस्थता की प्रार्थना में लगे रहते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जब वे मध्यस्थता की प्रार्थना द्वारा समाज को सेवा प्रदान करते हैं, निस्संदेह इन मध्यस्थों की लगातार प्रार्थना के कारण परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। मूसा मध्यस्थता की प्रार्थना में है। सबसे पहले तो लोगों का पाप मान लेना अर्थात पाप स्वीकारन है। पापों का मानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पापों के अंगीकार के बिना क्षमा नहीं है। इसके बिना परमेश्वर से क्षमा दान पाने का कोई और मार्ग नहीं है। पापों को छिपा लेने का अर्थ ये नहीं कि आपके पाप क्षमा किए जा चुके हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। हम प्रायः अपने पापों पर पर्दा डालते हैं कि हमारे पाप प्रकट ना हो, अपने दोष पर ऐसा पाबंद लगा देते हैं कि बुरा ना दिखे। हम परमेश्वर के सामने आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें तो कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के लिए काम करने का द्वार आप तभी खोल सकते हैं जब आप उसके साथ ईमानदार और निष्कपट हो तथा उसके सामने अपने पाप और दोषों का अंगीकार कर ले। वो आपके पापों को क्षमा करने में और सब अधार्मिकता से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और न्यायी है। परंतु परमेश्वर तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने पापों का अंगीकार नहीं कर लेते हैं। परमेश्वर के साथ निष्कपट एवं ईमानदार बने रहे, पापों का अंगीकार करें। मूसा ने स्वीकार किया कि उसकी प्रजा ने पाप किया और तब मूसा ने कहा, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। निर्गमन 32:32। इस पंक्ति पर ध्यान दे, उनका पाप क्षमा कर के बाद एक छोटी सी रेखा है। इसका अर्थ यह है कि वहां कुछ समय लगा है। कितना समय ये हम नहीं जानते। निश्चय ही मूसा परमेश्वर से उत्तर पाने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो प्रतीक्षा करता रहा और स्वर्ग से अनुग्रह या दया की वाणी सुनाई न गई, ऐसी वाणी जो कहे, मैंने क्षमा किया, मैं उन्हें धोकर शुद्ध करूंगा, मैं उन्हें दंड नहीं दूंगा। मूसा प्रतीक्षा करता रहा और वो चुप्पी का समय मानो परमेश्वर की ओर से इनकार था। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, कोई उत्तर नहीं। हो सकता है कि परमेश्वर क्षमा न करे, हो सकता है वो इनकार कर दे। इसलिए मूसा ने आगे कहा, नहीं तो अपनी लिखी पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। निर्गमन 32:32 पर यीशु सर्दिस की कलीसिया से कहता है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। प्रकाशित वाक्य 3:5। यदि परमेश्वर अपनी प्रजा के पापों को क्षमा नहीं करता तो मूसा कह रहा है, मेरा नाम उस पुस्तक में से काट दे जो परमेश्वर ने लिखी है, अर्थात जीवन की पुस्तक में से काट दे। ये निश्चय ही हमें प्रेम की गहराई को दिखाता है, जिसे हम में से कुछ ही सही ढंग से समझ पाते हैं। यहां मूसा है जो लोगों की खातिर अपना नाम कटवाने को आगे आता है। यदि परमेश्वर अपने लोगों के पाप क्षमा ना करे तब मुझे भूल जा। यहां मूसा दोषी प्रजा के साथ अपने आप को भी गिन रहा है और परमेश्वर के सन्मुख उन दोषी लोगों के बीच खड़ा है। ये प्रेम उसमें आया कहां से? ये स्वभाव से तो मूसा के मन में नहीं था। जब जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर ने मूसा से कहा था, जा और मेरे लोगों को मिस्र देश से निकाल ले, उस समय उसको उनसे कोई मतलब नहीं था, उनसे कोई लेन देन नहीं था। वो अपने आप में खुश था, उन्होंने तो पहले ही उसे मुसीबत में डाल दिया था। वो किसी प्रकार से उनसे संबंध नहीं रखना चाहता था। वो परमेश्वर के सामने अनेक तरह के बहाने बनाने लगा था कि वो मिस्र देश नहीं जा सकता है और उन्हें मिस्र से निकालकर नहीं ला सकता। परमेश्वर ने उसके एक एक बहाने का उत्तर दिया था, बोलने में निपुण नहीं, वो तेरे लिए मुंह ठहरेगा, वे मेरे प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, तेरे हाथ में वो क्या है उसे भूमि पर ढाल दे, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। जब परमेश्वर ने उसके सब बहानों का उत्तर दे दिया तब मूसा ने कहा, हे परमेश्वर कृपया करके किसी और को भेज दे, मैं जाना नहीं चाहता। सच तो ये है कि मूसा के मन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी कि जाकर उनमें काम करे, परंतु परमेश्वर ने उसके मन में काम किया और इसराइल के लिए जो अनुकंपा और प्रेम मूसा के मन में था वो परमेश्वर ने उसके मन में डाला था। इस कारण यदि हम किसी के लिए मन में अनुकंपा उत्पन्न करना चाहे हैं तो ये हमारी मात्र मूर्खता होगी। इसे परमेश्वर की ओर से आना है। आप अनुकंपा को उत्पन्न नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है मैं तो प्रत्येक जन से प्रेम करूंगा। इस प्रकार तो आप अपने मन में पहले से कहीं अधिक द्वेष पाएंगे। अतः जिस पल आप ऐसा निर्णय लेकर अपने द्वार से बाहर निकलेंगे कि आप आज सबसे प्रेम करेंगे और प्रेम का उदाहरण बन जाएंगे, मैं कहता हूं उसी पल 3 कदम आगे बढ़ते ही आपके सामने से एक कार अंधाधुन चलती हुई निकल जाती है। आप क्रोध से आग बुबला हो जाते हैं और उसे कोसने लगते हैं। आपका प्रेम कहां गया? प्रेम परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकता है, ये परमेश्वर का कार्य है। अतः मूसा की प्रशंसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर ही था जिसने उसे प्रेम का वरदान दिया था। पौलुस ने भी ऐसी ही बात कही थी, क्योंकि मैं यहां तक चाहता हूं कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। रोमियो 9:3। मुझ में ऐसा प्रेम नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मुझे खोए हुओं के लिए और अधिकाधिक अनुकंपा प्रदान कर। मेरा स्वभाव तो ऐसा है। हे भाई, यदि तुम मूर्खी रहना चाहता है और नरक जाना चाहता है तो तू जान और तेरा काम जाने, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका मन परिवर्तन नहीं कर सकता या आपको मुक्ति नहीं दिला सकता या इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। मेरा कहने का अर्थ है, यदि आपने मन में ठान लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। परंतु सत्य तो यह है कि मुझे बहुत अधिक अनुकंपा की आवश्यकता है। मेरे विचार में कलीसियाओं की एक आवश्यकता है, खोए हुओं के प्रति महान अनुकंपा। हम खोए हुए संसार की दुर्दशा को देखते हुए विचलित हुए बिना, बोझिल हुए बिना, उसके लिए गवाही बने बिना संतोष के साथ बैठे नहीं रह सकते हैं। हमारे मुंह से निकलता है, हे परमेश्वर मुझे अपना सा मन प्रदान कर, खोए हुओं के लिए अनुकंपा, मुझे जॉन नॉक्स की सी अनुकंपा प्रदान कर, हे परमेश्वर मुझे मेरा देश दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। खोई हुई आत्मा के लिए सच्चा बोझ। हमारे पास ये नहीं है, हम इसे अपने में नहीं रखते, परमेश्वर ये हमें दे, खोई आत्मा के लिए एक महान बोझ, जिससे कि हम मध्यस्थ बन जाए, क्योंकि मध्यस्थता की प्रार्थना के पीछे यही एक भेद छिपा है कि उसमें खोए हुओं के लिए असीम प्रेम और बोझ होता है। एक महान मध्यस्थ की यही गुण होता है, वो अनुकंपा और प्रेम से प्रार्थना करता है, उसका प्रेम और उसकी अनुकंपा प्रार्थना से झलकती है। मूसा की विनती विवेकपूर्ण प्रतीत नहीं होती है, मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दे। मूसा ये मूर्खता है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। निर्गमन 32:33 पर मुझे अपना नाम काटने के लिए मत कह, ये मूर्खता है, मैं उनके नाम काट दूंगा जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। एक समय था जब प्रभु ने मुझसे भी ठीक ऐसे ही कहा था जैसे उसने मूसा से कहा। जब मेरी मां मरने पर थी, मैं उनके शयन कक्ष में गया और उनके पलंग के पास बैठकर दुख सहने को देखता रहा, अपने मन में समझने का प्रयास करता रहा, परमेश्वर के सामने रोता रहा। मैंने उनके सुंदर हाथ को देखा और उन सब खाने की चीजों को याद किया जिन्हें उन हाथों ने मेरे भोग के लिए तैयार किया था। मुझे उस समय का भी ध्यान आया जब मेरा माथा बुखार के कारण पसीने से तर हो जाता था, तब वे ही हाथ उसे पोंछते थे। मैंने उन हाथों की उन सब सेवाओं को याद किया जो मेरे और मेरे लाभ के लिए की गई थी, जैसे कपड़े धोना, उन्हें बाहर टांगना, सुखाने के बाद लाकर उन्हें तह करना, मेरे सोने के लिए बिस्तर लगाना आदि। मैं वहां बैठकर रोता रहा, कैसे नेक इंसान, मेरा सबसे अधिक प्रिय इंसान, उसका कष्ट देखना मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मैं जानता था कि वो कष्ट के कारण दिन रात जागती रहती थी, सो नहीं पाती थी। मैं उनके पाँव की ओर गया और परमेश्वर के सामने मुंह के बल गिरा। मैंने कहा, प्रभु मैं कोई हीरो या नायक नहीं हूं, मैं ये मांग नहीं कर रहा हूं कि आप उन्हें चंगा कर दे, परंतु वो आपकी है, उनका जीवन आपका है, वो पूरी तरीके से आपकी है, परंतु हे प्रभु मैं उनका दुख और नहीं देख सकता। यद्यपि मैं एक हीरो नहीं हूं, परंतु प्रभु उनका दुख ले ले और वो दुख एवं पीड़ा आज मुझ पर डाल दे और मैं सारा दिन उनकी पीड़ा सहने से प्रसन्न होऊंगा, जिससे कि आज उन्हें आराम मिल सके। मैं ये सदा के लिए नहीं मांग रहा हूं, परंतु प्रभु होने दे कि आज मैं उनकी पीड़ा सह सकूं और उन्हें कम से कम एक दिन तो चैन वो आराम मिले। यीशु मेरे पास आया और आकर ठीक मेरे बगल में खड़ा हो गया और उसने कहा, चक ये बात तो मूर्खतापूर्ण है। उसने कहा, उसके लिए मैं पहले ही दुख सह चुका हूं, इसे करने की तुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा, प्रभु इस मूर्खतापूर्ण कथन के लिए मुझे क्षमा करें, मैं जानता हूं कि आपने उनका दुख सह लिया। मैं उनका दुख एवं पीड़ा सहने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ठीक उसी क्षण मेरी मां ने अचंभे से देखा और उन्हें कहा, देखो दर्द जाता रहा, मुझे कोई दर्द नहीं है। उसके बाद से उन्होंने एक क्षण भी दर्द का अनुभव कभी नहीं किया। अकस्मात की मुझ पर कैंसर के विषाद की अपेक्षा परमेश्वर की महानता और मसीह यीशु का सामर्थ्य प्रकट हुआ। मुझे ये बोध हुआ कि मसीह में परमेश्वर के महान सृजनात्मक सामर्थ्य के सामने कुछ हानिकारक कोशिकाएं क्या महत्व रखती है। हम मनुष्य हैं और परमेश्वर के सामने मूर्खता भरी बातें करते हैं। जैसे मूसा ने कहा, हे परमेश्वर मेरा नाम मिटा दे। परमेश्वर ने कहा, मूसा ये तू क्या कह रहा है, जो मेरे विरुद्ध पाप करता है मैं उसी का नाम मिटाता हूं। तथापि मूसा की बातों के पीछे उसकी अनुकंपा सराहनीय है। मनुष्य की भाव शून्य और कठोर प्रवृत्ति को बदलने में परमेश्वर जो कार्य करता है वो वास्तव में सराहनीय होता है। इसराइल के वंशज, मुझे उनकी चिंता नहीं, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं जंगल में खुश हूं, संतुष्ट हूं। उस अनिच्छा से जो आरंभ में मूसा में थी, आज ऐसी अनुकंपा से भर जाना कि उसने कहा, प्रभु उनके पाप क्षमा कर, यदि नहीं तब मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूं कि अपनी पुस्तक में से मेरा नाम मिटा दे। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसी अनुकंपा परमेश्वर से ही प्राप्त हो सकती है, जो परमेश्वर का कार्य है। मैं इस कार्य को सराहता हूं कि परमेश्वर हम में से हरेक के जीवन में संसार के प्रति परित्याग को बदलकर संपूर्ण सहयोग की भावना डाल देता है। जब हम रोगियों के लिए और हमारे देश के लिए मध्यस्थता करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनकी इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्होंने ही बनवाया था। निर्गमन 32:34-35 पर प्रभु ने कहा, ठीक है अब उनकी अगुवाई कर और मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा। अब मूसा को उत्तर देना है और आगामी संदेश इसी पर होगा। परमेश्वर ने तो उत्तर देकर कहा, मैं अपना दूत तेरे आगे भेजता हूं, तू जा और उनकी अगुवाई कर। परमेश्वर ने चाहा तो अगले अध्याय में हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन समाप्त कर लेंगे। बाद के बाग में बहुत सी बातें दोहराई गई है जिन पर विचार करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वे परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार अब तंबू का निर्माण करेंगे। हमें तो उन निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बुद्धि और समझ दे, क्योंकि आप जानते हैं कि अब मसीह हमारा मंदिर है, वही हमारे लिए परमेश्वर से मिलने का स्थान है। आप मसीह यीशु से अलग होकर परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। वही मिलाप का तंबू है, वही वो स्थान जहां परमेश्वर आपको मिल सकता है, मसीह यीशु। बेड़ों में जो चांदी की धातु प्रयोग में लाई वो पवित्र शास्त्र में छुटकारे की धातु है। सोना स्वर्ग का और परमेश्वर का प्रतीक है, पीतल न्याय का प्रतीक है। इस प्रकार जब आप इन धातुओं के बारे में देखते हैं तो आप देखेंगे कि छुटकारे में चांदी का स्थान है, सोना परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान और पीतल पाप के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय का स्थान है। ये सब सुंदर सुंदर प्रतीक है, रंगों के अपने अपने प्रतीक है, जिस पर हम अगले अध्ययन में विचार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन की अगुवाई करे और आपको आशीष दे, आपको यीशु मसीह के प्रेम में बनाए रखे। काश कि वे खोए हुओं के प्रति आपके बोझ को बढ़ाए। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में हो कि आप उसकी वाणी को सुने, उसके कार्य को करें, उसके मार्ग में चलें, यीशु के नाम में।